अध्याय 20 मिस्र में यूसुफ। ये अध्याय उत्पत्ति 39-41 पर आधारित है। इसी दौरान यूसुफ उसके बंदीकर्ता व्यापारियों के साथ मिस्र के मार्ग पर था। जब कारवा कनान देश की सीमाओं की और दक्षिण में जा रहा था, यूसुफ दूर से उन पहाड़ों को पहचान सकता था जिनके बीच उसके प्रिय पिता के तंबू थे। अपने पिता के अकेलेपन व मनोव्यथा के बारे में सोचकर वो बहुत रोया। फिर से दोतान का दृश्य उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने अपने क्रोधित भाइयों को देखा और उसे लगा मानो उनकी डरावनी दृष्टि उसी पर है। उसकी पीड़ा भरी विनतियों के उत्तर में दिए गए डंक मारने वाले अपमानजनक शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। कंप कपाते हृदय से भविष्य की ओर देखने लगा। परिस्थितियों में क्या बदलाव आया था? एक लाड़ प्यार में पले हुए पुत्र से एक घृणित और असहाय दास। अकेला और मित्रहीन जहां वो जा रहा था, उस देश में उसके हिस्से में क्या आने वाला था? कुछ समय के लिए यूसुफ ने स्वयं को असहनीय शोक और भय को समर्पित कर दिया, लेकिन परमेश्वर की पूर्व दृष्टि में यह अनुभव भी यूसुफ के लिए आशीष था। कुछ ही घंटों में वो सीख गया जो उसे कई वर्ष भी नहीं सिखा सकते थे। पिता की एक पक्षीयता अपने प्रेम की तरह दृढ़ और नम्र थी। एक पक्षीयता और प्यार के कारण यूसुफ को बहुत कष्ट उठाना पड़ा। उसकी अविवेकपूर्ण प्राथमिकता यूसुफ के भाइयों को क्रोधित कर उन्हें निर्दयी कृत्य के लिए उकसाया, जिसके कारण उसे अपने घर से अलग होना पड़ा। उसका प्रभाव उसके चरित्र में भी स्पष्ट रूप से प्रकट था। उन गलतियों को प्रोत्साहन दिया गया था जिनको सुधारना अब अनिवार्य था। वो आत्मनिर्भर और श्रमसाध्य बन रहा था। वो अपने पिता की नम्रतापूर्ण देखभाल का अभ्यस्त था और अब एक दास और अपरिचित के कष्टपूर्ण व उपेक्षित जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने में असमर्थ था। फिर उसके विचार उसके पिता के परमेश्वर पर केंद्रित हुए। उसके बचपन में उसे परमेश्वर का भय मानना और उससे प्रेम करना सिखाया गया था। प्रायः अपने पिता के तंबू में उसने घर से भागे हुए पलायक और निराश्रय याकूब के स्वप्न दर्शन की कहानी को सुना था। उसे याकूब को दी गई परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं और किस प्रकार वे पूरी हुईं इस बारे में बताया गया था। उसे ये भी बताया गया था कि किस प्रकार आवश्यकता की घड़ी में परमेश्वर के स्वर्गदूत उसे निर्देश, सांत्वना व सुरक्षा प्रदान करने आए थे। उसने मनुष्य के लिए एक उद्धारकर्ता का प्रयोजन करने में परमेश्वर के प्रेम के बारे में सीखा था। अब ये बहुमूल्य पाठ विस्तृत रूप में उसके सामने आए। यूसुफ को विश्वास था कि उसके पूर्वजों का परमेश्वर उसका भी परमेश्वर होगा। उसी समय और उसी स्थान पर उसने स्वयं को पूर्णतया परमेश्वर को समर्पित किया और प्रार्थना की कि इज़राइल का रक्षक उसके प्रवास के देश में भी उसके साथ हो। स्वयं को परमेश्वर के प्रति सच्चा प्रमाणित करने के संकल्प से वो आत्मविभोर हो उठा। उसने निश्चय किया किसी भी परिस्थिति में उसका आचरण ऐसा होगा जैसा स्वर्ग के राजा की प्रजा का होना चाहिए। उसने परमेश्वर की पूरे मन से सेवा करने का, अपने भाग्य में आने वाली परीक्षाओं का धैर्यपूर्वक सामना करने का और प्रत्येक कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करने का संकल्प किया। एक दिन का अनुभव यूसुफ के जीवन में नया मोड़ ले आया। उसकी भयानक विपत्ति ने उसे एक लाड़ले से एक आत्मसंपन्न, साहसी, विचारपूर्ण पुरुष में परिवर्तित कर दिया। मिस्र पहुंचने पर यूसुफ को पोतीफर को बेच दिया गया, जो राजा के सुरक्षा दल का कप्तान था और जिसकी सेवा में यूसुफ 10 वर्ष तक रहा। यहां उसे असाधारण प्रलोभनों का सामना करने पड़ा। वो मूर्ति पूजा के बीच था। राजसी गौरव के आडंबर से परिपूर्ण देवी देवताओं की आराधना को उस समय के उच्चतम सभ्य जातियों की संस्कृति और बाहुल्य का समर्थन प्राप्त था। फिर भी यूसुफ ने अपनी सादगी और परमेश्वर के प्रति निष्ठा को बचाए रखा। उसके चारों ओर पाप के दृश्य और स्वर थे, लेकिन वो उनसे अप्रभावित रहा। वो निषिद्ध विषयों पर अपने मन के मनन करने की अनुमति नहीं देता था। मिस्रवासियों की कृपादृष्टि प्राप्त करने की अभिलाषा में वो अपने सिद्धांतों को नहीं छुपाता था। ऐसा करने पर वो प्रलोभन में पड़ जाता, लेकिन वो अपने पूर्वजों के धर्म से लज्जित नहीं था और उसने इस तथ्य को छुपाने का कोई प्रयत्न नहीं किया कि वो यहोवा का आराध्य था। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की, और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। यूसुफ में पोतीफर का विश्वास बढ़ता गया और उसने यूसुफ को अपनी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया, और फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बनाकर सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में छोड़ दिया, यहां तक कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वो अपनी संपत्ति का हाल कुछ न जानता था। यूसुफ की देख रेख में हर चीज में उल्लेखनीय समृद्धि कोई प्रत्यक्ष चमत्कार का परिणाम नहीं थी, लेकिन उसका परिश्रम, देख रेख और बल को ईश्वरीय आशीष से अभिषिक्त किया गया। यूसुफ ने अपनी सफलता का श्रेय परमेश्वर की कृपा दृष्टि को दिया, और उसके मूर्ति पूजक स्वामी ने भी इसको यूसुफ की अद्वितीय समृद्धि का रहस्य स्वीकार किया। लेकिन निरंतर सुनिर्देशित प्रयत्न के अभाव में सफलता असंभव थी। अपने दास की निष्ठा से परमेश्वर की महिमा हुई। उसका उद्देश्य था कि निर्मलता और धार्मिकता में परमेश्वर में विश्वास रखने वाले मूर्ति पूजकों से बिल्कुल भिन्न प्रकट हों, और इस तरह मूर्ति पूजा के अंधकार के बीच अलौकिक अनुग्रह का प्रकाश चमके। यूसुफ की विनम्रता और निष्ठा ने मुख्य कप्तान का हृदय जीत लिया और वो उसे दास नहीं वरन बेटे के समान मानने लगा। नौजवान का संपर्क ज्ञानी और विशिष्ट पुरुषों से कराया गया और उसने भाषा, विज्ञान और प्रशासन का ज्ञान प्राप्त किया, वो शिक्षा जो मिस्र के भावी मुख्यमंत्री के लिए अनिवार्य थी। लेकिन यूसुफ के विश्वास और निष्ठा को अग्नि समान परीक्षाओं द्वारा परखा जाना था। उसके स्वामी की पत्नी ने नौजवान यूसुफ को परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए ललचाने का प्रयत्न किया। इससे पहले वो मूर्ति पूजकों के देश में प्रचलित भ्रष्टाचार से अछूता रहा था, लेकिन ये प्रलोभन इतना आकस्मिक, इतना प्रभावशाली, इतना सम्मोहक था कि इसका सामना किस तरह किया जाए। यूसुफ भली भांति जानता था कि प्रतिशोध का परिणाम क्या होगा। एक तरफ थे छिपाव, कृपा दृष्टि और उपहार, और दूसरी तरफ थे अपमान, कैद और संभवतः मृत्यु भी। उसका संपूर्ण भावी जीवन उस क्षण के निर्णय पर निर्भर था। क्या सिद्धांत विजयी होगा? क्या यूसुफ अभी भी परमेश्वर के प्रति सत्यवान होगा? अनिर्वचनीय उत्सुकता के साथ स्वर्गदूत इस दृश्य को देखते रहे। यूसुफ का उत्तर धार्मिक सिद्धांत की शक्ति को दर्शाता है। वो अपने सांसारिक स्वामी के विश्वास को छलने के लिए तैयार न था, और किसी भी परिस्थिति में वो अपने स्वर्गीय स्वामी के प्रति सत्यवान होने को तत्पर था। परमेश्वर और पवित्र स्वर्गदूतों की निरीक्षण करती आंखों के सामने भी कई लोग अपने सहजनों की उपस्थिति में अपराधी नहीं ठहरने की स्थिति में मौके का फायदा उठा लेते हैं, लेकिन यूसुफ ने सबसे पहले परमेश्वर का ध्यान किया। मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? उसने कहा।
यदि हम इस स्वाभाविक धारणा को संजोए रखें कि परमेश्वर हमारे प्रत्येक कृत्य और कथन को देखता और सुनता है और हमारे शब्दों और कामों का उल्लेख रखता है और हमें इन सब का सामना करना है, तो हम पाप करने से डरेंगे। नौजवान याद रखें कि वे कहीं भी हों और कुछ भी करें, वे परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। हमारे आचरण का कोई भी अंश अवलोकन से नहीं बच सकता। हम अपने उपायों को सर्वोच्च से नहीं छुपा सकते। मनुष्य द्वारा बनाए गए नियमों का कठोर होते हुए भी निसंकोच उल्लंघन किया जाता है, क्योंकि वे दृष्टि में नहीं आते। लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था के साथ ऐसा नहीं होता। अपराधी के लिए काली से काली मध्यरात्रि भी आवरण नहीं होती। वह भले ही स्वयं को अकेला सोचे, लेकिन प्रत्येक कार्य का एक अदृश्य साक्षी है। उनके हृदय के अभिप्राय तक ईश्वरीय निरीक्षण के पात्र होते हैं। प्रत्येक कृत्य, प्रत्येक शब्द, प्रत्येक विचार इतनी स्पष्टता से अंकित किया जाता है मानो समस्त जगत में एक ही मनुष्य हो और स्वर्ग का ध्यान उसी पर केंद्रित हो। यूसुफ ने अपनी निष्ठा के लिए कष्ट उठाया, क्योंकि उसको ललचाने वाली ने उस पर कुकर्म का आरोप लगाकर उसे कैद खाने में डलवाकर अपने प्रतिशोध को पूरा किया। यदि पोतिफर ने अपनी पत्नी द्वारा यूसुफ पर लगाए आरोप को सच मान लिया होता तो नौजवान इब्री ने अपने प्राण गंवा दिए होते, लेकिन उसके आचरण की शालीनता और ईमानदारी उसकी निष्कपटता का प्रमाण थे, और फिर भी अपने स्वामी के घर की प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए उसे अपमान और अधीनता को सहन करना पड़ा। प्रारंभ में दरोगा द्वारा यूसुफ के साथ कठोर व्यवहार किया। भजन संहिता 105 आयत 18-19 में भजनकर्ता कहता है, उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया, वह लोहे की साकलों में जकड़ा गया, जब तक कि उसकी बात पूरी न हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। लेकिन बंदी गृह के अंधकार में भी यूसुफ का वास्तविक चरित्र चमकता रहा। वह अपने विश्वास और धैर्य में स्थिर रहा। उसके वर्षों के निष्ठावान सेवा का भुगतान निष्ठुरता से किया गया, लेकिन इससे वह उदास या अविश्वसनीय नहीं बना। उसके पास वह शांति थी जो जागरूक निष्कपटता से आती है, और अपने विषय में उसे परमेश्वर पर विश्वास था। वह अपने पर हुए अत्याचारों पर विचारशील नहीं हुआ, बल्कि दूसरों के कष्ट निवारण में अपने कष्टों को भूल गया। कैदखाने में भी उसके पास करने के लिए काम था। परमेश्वर उसे महानतम उपयोगिता के लिए यातना की पाठशाला में तैयार कर रहा था। कैदखाने में उत्पीड़न और निरंकुशता के परिणामों को देखकर उसने न्याय, सहानुभूति व कृपा के सबक सीखे, जिन्होंने उसे संवेदना और बुद्धिमता से शक्ति का अभ्यास करने को तैयार किया। यूसुफ ने धीरे धीरे बंदी गृह के दरोगा का विश्वास जीता और अनंतः उसे अन्य कैदियों को जो कारागार में थे प्रभार सौंप दिया गया। जो भूमिका उसने बंदी गृह में निभाई, उसके नैतिक जीवन की निष्ठा और पीड़ितों के लिए उसकी संवेदना ने उसकी भावी समृद्धि और सम्मान के लिए मार्ग खोल दिया। प्रकाश की प्रत्येक किरण जो हम दूसरों पर बिखेरते हैं वह हम पर ही प्रतिबिंबित होती है। खेदयुक्त को बोला गया प्रत्येक संवेदनशील शब्द, उत्पीड़ित के छुटकारे के लिए प्रत्येक कार्य, निर्धन को दी गई प्रत्येक सौगात यदि सही नीयत से प्रेरित हो तो वह देने वाले के लिए आशीष का कारण होंगे। फिरौन के प्रधान पिलानेहार और प्रधान पकानेहार को किसी अपराध के लिए बंदी गृह में डाल दिया गया और उन्हें यूसुफ के हाथ में सौंप दिया गया। एक दिन उन्हें उदास देखकर उसने नम्रतापूर्वक उनसे उनकी उदासी का कारण पूछा, और उन्हें बताया गया कि उन दोनों ने एक असाधारण स्वप्न देखा था जिसकी महत्ता को जानने के लिए वे उत्सुक थे। यूसुफ ने उनसे कहा, क्या स्पष्टीकरण करना परमेश्वर का काम नहीं? मुझे अपना अपना स्वप्न बताओ। दोनों ने अपने अपने स्वप्न का वर्णन किया और यूसुफ ने उनका मतलब समझाया। अब से 3 दिन के अंदर फिरौन फिर से पिलानेहार को उसके पद पर नियुक्त करेगा, और वह पहले के समान फिरौन का पिलानेहारा होकर उसका कटोरा उसके हाथ में फिर से दिया करेगा। लेकिन पकानेहारे को फिरौन की आज्ञा से मृत्यु के घाट उतार दिया जाएगा। ये दोनों घटनाएं वैसी ही घटित हुईं जैसे इनके बारे में भविष्यद्वाणी की गई थी।
फिरौन का पिलानेहार यूसुफ के प्रति अपने स्वप्न के उत्साहवर्धक स्पष्टीकरण के लिए और दयादृष्टि के कई काया के लिए अत्यंत कृतज्ञ था, और इसके बदले में यूसुफ ने अपने अन्यायपूर्ण दासत्व का मर्ममेदी ढंग से वर्णन करते हुए उससे विनती की वो फिरौन से उसकी चर्चा करे। उसने कहा, जब तेरा भला हो जाए तब मेरा स्मरण करना, और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर से मुझे छुड़वा देना, क्योंकि सचमुच इब्रियों के देश से मुझे चुरा कर लाया गया है, और यहां भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण मैं इस कारागार में डाला जाऊं। प्रधान पकानेहार ने देखा कि स्वप्न प्रत्येक विवरण में पूरा हुआ था, लेकिन राजसी पद पर पुनः स्थापित होने पर उसने अपने हितकारी के बारे में एक बार भी न सोचा। यूसुफ 2 वर्ष और बंदी बनकर रहा। जो आशा उसके हृदय में जागृत हुई थी धीमे धीमे समाप्त हो गई, और अन्य सब परीक्षाओं के साथ कृतज्ञहीनता का पीड़ादायक डंक भी जुड़ गया। लेकिन एक ईश्वरीय हाथ बंदी गृह के फाटकों को खोलने वाला था। मिस्र के राजा ने एक ही रात में 2 स्वप्न देखे जो उसी घटना की ओर संकेत कर रहे थे, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे किसी घोर संकट का पूर्वाभास करा रहे थे। वो उनकी महत्ता नहीं जान पाया और वे उसके मन को व्याकुल करते रहे। उसके राज्य के ज्योतिषी और पंडित कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दे पाए। फिरौन की उलझन और व्यथा बढ़ गई और उसका महल भय से भर गया। उस सामान्य घबराहट ने प्रधान पिलाने हारे को उसके स्वप्न की परिस्थितियों का स्मरण कराया। इसके साथ ही उसे यूसुफ की याद आई और वो अपनी कृतज्ञता और भुलक्करपन के लिए पश्चाताप से भर गया। उसने तुरंत फिरौन को सूचित किया कि किस तरह एक इब्री बंदी ने उसके और प्रधान पकाने हारे के स्वप्न का स्पष्टीकरण किया था और किस तरह वे भविष्यद्वाणियां पूरी हुई थीं। फिरौन के लिए अपने राज्य के ज्योतिषियों और पंडितों से हटकर एक परदेशी और दास से परामर्श लेना अपमानजनक था, लेकिन अपने मन को शांत करने के लिए वो छोटी से छोटी सेवा को स्वीकार करने के लिए तैयार था। यूसुफ को तुरंत बुलाया गया। उसने अपने बंदीगृह के वस्त्र उतारे, अपना मुंडन करवाया, क्योंकि उसके कारावास और अपमान की अवधि में उसके बाल बहुत लंबे हो गए थे। फिर वो फिरौन की उपस्थिति में लाया गया। फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है और उसके फल का बताने वाला कोई भी नहीं, और मैंने तेरे विषय में सुना है कि तू स्वप्न सुनते ही उसका फल बता देता है। यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरीन के लिए शुभ वचन देगा। यूसुफ का फिरौन को दिया हुआ उत्तर उसकी दीनता और उसके विश्वास को दर्शाता है। वो शालीनता से स्वयं में उत्तम बुद्धिमता के होने के सम्मान को नकार देता है। मैं तो कुछ नहीं जानता, केवल परमेश्वर ही इन रहस्यों को समझा सकता है। फिर फिरौन ने अपना स्वप्न यूसुफ को बताया। मैंने देखा कि मैं नील नदी के किनारे खड़ा हूं। फिर क्या देखा? कि नदी में से 7 मोटी और सुंदर गायें निकलकर चरागाह की घास चरने लगीं। फिर क्या देखा? कि उनके पीछे 7 और गायें निकली, जो दुबली और बहुत कुरूप और दुर्बल हैं। मैंने सारे मिस्र में ऐसी कुडौल गायें कभी नहीं देखीं। इन दुर्बल और कुडौल गायों ने उन पहली 7 मोटी गायों को खा लिया, और जब वे उनको खा गईं, तब ये मालूम नहीं होता था कि वे उनको खा गई हैं, क्योंकि वे पहले के समान जैसी की तैसी कुडौल रहीं। तब मैं जाग उठा। फिर मैंने दूसरा स्वप्न देखा कि एक ही डंठल में 7 अच्छी अच्छी और अन्न से भरी हुई बालें निकली। फिर क्या देखता हूं कि उनके पीछे और 7 बालें छूछी छूछी और पतली और पुरवाई से मुरझाई हुई निकली, और इन पतली बालों ने उन 7 अच्छी बालों को निगल लिया। इसे मैंने ज्योतिषियों को बताया, पर इसका समझाने हारा कोई नहीं मिला।
तब यूसुफ ने फिरौन से कहा, फिरौन का स्वप्न एक ही है। परमेश्वर जो काम करना चाहता है उसको उसने फिरौन पर प्रकट किया है। 7 वर्ष बहुतायत की उपज के होंगे, खेत और बगीचे पहले से बहुतायत से उपज देंगे। उनके पश्चात 7 वर्ष अकाल के आएंगे और सारे मिस्र के लोग इस सारी उपज को भूल जाएंगे और अकाल से देश का नाश होगा। स्वप्न का दोहराया जाना उसके पूरे होने की निश्चितता और शीघ्रता का प्रमाण था, और वो कहता रहा। इसलिए अब फिरौन किसी समझदार और बुद्धिमान पुरुष को ढूंढ करके उसे मिस्र देश पर प्रधानमंत्री ठहराए। फिरौन ये करे कि देश पर अधिकारियों को नियुक्त करे, और जब तक सुकाल के 7 वर्ष रहें तब तक वो मिस्र देश की उपज का पंचमाश लिया करे, और वे इन अच्छे वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तु इकट्ठा करें और नगर नगर में भंडार घर भोजन के लिए फिरौन के वश में करके उसकी रक्षा करें। वो भोजन वस्तु अकाल के उन 7 वर्षों के लिए जो मिस्र देश में आएंगे देश के भोजन के लिए रखी रहे, जिससे देश का उस अकाल से सत्यनाश न हो जाए। ये स्पष्टीकरण इतना तर्कसंगत और अनुरूप था, और जो नीति सुझाई गई इतनी ठोस और समझदारीपूर्ण थी कि उसके औचित्य पर संदेह नहीं किया जा सकता था। लेकिन योजना को क्रियान्वित करने के लिए किसको नियुक्त किया जाना था? इस चयन की बुद्धिमता पर राज्य का संरक्षण निर्भर था। फिरौन परेशान था। कुछ समय तक नियुक्ति के विषय पर सोच विचार किया गया,
प्रधान पिलानेहारे के माध्यम से फिरौन बंदीगृह के शासन प्रबंध में यूसुफ द्वारा दिखाई गई बुद्धिमत्ता और समझदारी के बारे में जाना था। ये प्रमाणित था कि वो उत्कृष्ट प्रशासकीय योग्यता का स्वामी था। पिलानेहारे ने अब आत्मग्लानी से भरपूर अपने हितकारी की हार्दिक प्रशंसा के द्वारा अपनी पुरानी कृतज्ञहीनता का प्रायश्चित करने का प्रयत्न किया और फिरौन द्वारा की गई पूछताछ में उसकी जानकारी को सही ठहराया। पूरे राज्य में केवल यूसुफ ही राज्य पर मंडराने वाले संकट और उससे निपटने के उपायों का संकेत देने की क्रियात्मक बुद्धि में प्रतिभा संपन्न था। फिरौन को विश्वास हो गया था कि उसके द्वारा प्रस्तावित योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए वही गुण संपन्न था। ये स्पष्ट था कि वो ईश्वरीय शक्ति उसके साथ थी और फिरौन के अधिकारीगण में इस आपदा में राज्य के प्रशासन को संचालित करने के लिए कोई भी इतना योग्य नहीं था। उसके इब्री और दास होने के तथ्य को यदि उसके प्रमाणित विवेक और ठोस न्यायप्रियता के विरुद्ध तोला जाए तो वो तथ्य महत्वहीन था। क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा। नियुक्ति पर निर्णय हो गया और यूसुफ को ये आश्चर्यजनक उद्घोषणा की गई। परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। फिर फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकालकर यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसके गले में सोने की चेन डाल दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिए और उसके अपने दूसरेस्थ पर चढ़वाया और लोग उसके आगे ये प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो।
उसने उसको अपने भवन का प्रबंध और अपनी पूरी संपत्ति का अधिकारी ठहराया कि वो उसके हाकिमों को अपनी इच्छा के अनुसार कैद करे और पुरनियों को ज्ञान सिखाए। भजन संहिता 105 आयत 21-22।
कारागार से उठाकर यूसुफ को मिस्र देश का अधिपति बनाया गया। ये एक अति सम्मानीय पद था, लेकिन ये कठिनाइयों और खतरों से भरा था। कोई भी ऊंचाई पर बिना खतरे के खड़ा नहीं रह सकता। आंधी तराई के तुच्छ फूलों को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन पहाड़ों की चोटियों पर विशाल वृक्षों को जड़ से उखाड़ देती है। इसी प्रकार जिन्होंने अपने दीनता भरे जीवन में अपनी निष्ठा को कायम रखा, उन्हें भी सांसारिक सफलता और सम्मान पर आक्रमण करने वाले प्रलोभनों द्वारा गड्ढे में खींचा जा सकता है। लेकिन यूसुफ दरिद्रता और संपन्नता की परीक्षा में एक समान खड़ा उतरा। कारागार के कक्ष में और फिरीन की उपस्थिति में खड़े होने के समय भी उसके द्वारा परमेश्वर के प्रति एक समान निष्ठा दिखाई गई। वो अभी एक मूर्ति पूजक देश में परदेशी था जो परमेश्वर के भक्तों से अपने परिजनों से बिछड़ गया था, लेकिन उसे पूरा विश्वास था कि परमेश्वर का हाथ उसका मार्गदर्शन करता था और सर्वदा परमेश्वर पर निर्भर रहकर उसने अपने पद से संबंधित कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन किया। यूसुफ के माध्यम से फिरौन और मिस्र के प्रतिष्ठित मनुष्यों का ध्यान सच्चे परमेश्वर की ओर गया, और हालांकि वे मूर्ति पूजा से जुड़े रहे, लेकिन उन्होंने यहोवा के उपासकों के चरित्र और जीवन में प्रदर्शित सिद्धांतों का सम्मान करना सीखा। बुद्धिमता, धार्मिकता व चरित्र की दृढ़ता का ऐसा कीर्तिमान स्थापित करने में यूसुफ कैसे कामयाब हुआ? अपने प्रारंभिक वर्षों में उसने प्रवृत्ति से अधिक कर्तव्य पर ध्यान दिया था, और उसकी नौजवानी की निष्ठा, सरल विश्वास व नम्र स्वभाव उसकी प्रौढ़ अवस्था में फलवंत हुए। एक पवित्र और सादगी भरे जीवन ने विवेक संबंधी व शारीरिक योग्यताओं के सशक्त विकास में योगदान दिया। परमेश्वर के कामों द्वारा उसके साथ संपर्क से और विश्वास के उत्तराधिकारियों को सुपुर्द किए गए सर्वश्रेष्ठ सत्यों के चिंतन ने उसके आध्यात्मिक स्वभाव को उन्नत और उदात किया और उसके विवेक को उदार और प्रबल किया, जो अन्य कोई शिक्षा नहीं कर सकती थी। प्रत्येक स्थान पर छोटे से बड़े कामों में कर्तव्य निष्ठा उसकी प्रत्येक योग्यता को उच्चतर सेवा के लिए प्रशिक्षित कर रही थी। जो सृष्टिकर्ता की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करता है, उसमें चरित्र का सबसे सच्चा और सबसे उत्कृष्ट विकास होता है। अय्यूब 28 आयत 28 में लिखा है, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना वही समझ है। बहुत कम है जिन्हें चरित्र के विकास पर जीवन की छोटी छोटी बातों के प्रभाव का आभास होता है। जिसका संबंध हमसे है छोटा नहीं होता। विभिन्न परिस्थितियां जिनका हम दिन प्रतिदिन सामना करते हैं हमारी निष्ठा को परखने के लिए और हमें उच्चतम दायित्व के लिए योग्य बनाने के लिए बनाई गई है। सामान्य जीवन के व्यवहार में सिद्धांतों का पालन करने से हमारा मन प्रवृत्ति और भोग से ऊपर उठकर कर्तव्य पालन करने का अभ्यस्त हो जाता है। इस प्रकार अनुशासित किया गया विवेक हवा में कपकपाती घास की तरह सही और गलत के बीच नहीं झूलता। वे कर्तव्य के प्रति निष्ठावान होते हैं क्योंकि उन्होंने स्वयं को सत्यवादिता और कर्तव्यपरायणता के अभ्यास में प्रशिक्षित किया है। सबसे तुच्छ बातों में ईमानदारी के द्वारा वो महत्वपूर्ण विषयों में ईमानदार होने की शक्ति प्राप्त करते हैं। एक धर्मी चरित्र का मूल्य ओपीर के कुंदन से भी अधिक है। इसके अभाव में कोई भी सम्मानीय प्रतिष्ठा नहीं पा सकता। लेकिन चरित्र मीरास में नहीं मिलता, इसे खरीदा नहीं जा सकता। नैतिक विशिष्टता और उत्कृष्ट बौद्धिक आचरण संयोग का परिणाम नहीं है। उत्तम बहुमूल्य योग्यताओं को उन्नत न किया जाए तो उनका कोई महत्व नहीं। उत्कृष्ट चरित्र की रचना जीवन भर का कार्य है और अथक और निरंतर प्रयत्न का परिणाम है। परमेश्वर अवसर प्रदान करता है, सफलता उसके उपयोग पर निर्भर करती है।